मुंबई से कुछ दूर एक शांत इलाके में एक महल जैसे दिखने वाले घर में लगभग 27 साल का लड़का गुस्से में एक के बाद एक अपने हाथ में आने वाली चीज़ों को तोड़ता जा रहा था। वो इतना गुस्से में था कि गुस्से से उसका चेहरा, गोरा चेहरा, लाल हो गया था। अपने आलीशान विला में आज वो अकेला ही था और उसने अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड को जाने के लिए कह दिया था। काफ़ी सारा सामान को तोड़ने के बाद उसने अपनी गहरी काली आंखों को बंद किया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। कंट्रोल आहान, कंट्रोल। तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा, वरना ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं ना, तो खुद पर कंट्रोल करो। चलो उल्टी गिनती गिनना शुरू करो और अपने गुस्से पर काबू करो। वो आहान ओबेरॉय था, मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में से एक। 6 फीट लंबी हाइट, शार्प फेशियल फीचर्स और मस्कुलर फिट बॉडी, दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम, पर एक ही कमजोरी कि गुस्से की बीमारी होना। अपना गुस्सा काबू करने के लिए आहान ने अपनी उंगलियों पर 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी। वो पूरी गिनती गिन चुका था और दोबारा उसे रिपीट भी कर रहा था, मगर अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। दो बार गिनने के बाद भी आहान का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने एक वास उठाकर फेंकते हुए कहा, इन पागल डॉक्टरों को कोई और तरीका नहीं मिला गुस्सा कम करने के लिए। ये सबसे वाहियात तरीका है गुस्सा कम करने का। उल्टी गिनती गिनो। व्हाट द फक इज दिस? उसने फौरन फोन निकाला और अपनी साइकाइट्रिस्ट को कॉल किया। उसकी साइकाइट्रिस्ट तनु नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 26 साल के आसपास की थी। क्या हुआ अब? तनु ने उसके कॉल को उठाते ही कहा। मुझे गुस्सा आ रहा है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा, बताओ मैं क्या करूं? आहान बोला। तनु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कई सारे तरीके बता चुकी हूँ, तो अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं तुम्हारा गुस्सा कम कर सकूँ। क्या तुमने उल्टी गिनती ट्राई की? हाँ, मैं ये वाहियात तरीका भी ट्राई कर चुका हूँ। अगर तुम मेरा गुस्सा कम नहीं कर सकती तो फिर मैं तुम्हें इतनी फीस किस लिए देता हूँ? पता भी है, क्या तुम मेरे सेशन के लिए मुझसे पूरे 35,000 रुपये लेते हो? आहान चिल्लाकर बोला। और तुम्हें भी पता है सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें झेल रही हूँ, वरना सबको तुमने इस तरह से बेइज्जत किया है कि कोई तुम्हें देखने के लिए भी तैयार नहीं। एक डॉक्टर के टेबल पर तो तुमने गमला मार दिया था, वो तो तुम्हारे दादा ने पैसे रफा दफा करके मामले को निपटा दिया, वरना अब तक मीडिया में तुम्हारा नाम उछल रहा होता। मैं भी तुम्हें इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि तुम बचपन से मेरे फैमिली फ्रेंड हो। अब मेरी बात चुपचाप सुनो, म्यूज़िक चलाओ और उसे सुनते हुए सोने की कोशिश करो। घर का सामान तो तुमने तोड़ ही दिया होगा और अपनी बॉडीगार्ड भी तुमने भगा दिए होंगे, तो अभी के लिए तुम इस कमरे में मत सोना और पास के किसी और कमरे में जाकर सोना। किचन में मत जाना और चाकू छुरियों से दूर रहना। तनु ने उसे सब प्यार से समझाया ताकि आहान उसकी बात मान ले। अगर ये तरीका काम नहीं किया तो? आहान ने पूछा। अगर ये तरीका काम नहीं किया तो पानी में डूब जाना, मेरा कहने का मतलब बाहर स्विमिंग पूल बना हुआ है तो उसमें जाकर नहाना, तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। तनु ने ये कहकर कॉल कट कर दिया। आहान ने दोबारा उसे कॉल किया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बिना मेरे पूछे कॉल मत कट किया करो, ऐसा करके तुम मेरा गुस्सा और बढ़ा रही हो। ओ बस करो, मैं कोई तुम्हारा गुस्सा वुस्सा नहीं बढ़ा रही, और सीरियसली बता रही हूँ तुम्हें अब इसका कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, तनु ने एडवाइस दी। उसकी बात सुनकर आहान का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ गया। वो झुंझलाकर बोला, पता नहीं मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया, इससे बेहतर मैं अपना सर दीवार में मारकर ट्राई करता तो शायद मेरा गुस्सा कम हो जाता। नहीं, तुम बस वो करो जो मैंने कहा है, चलो अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। तनु ने कॉल रख दिया। आहान ने उस कॉल के कट होते ही अपने फ़ोन को ज़ोर से दीवार पर मारा और उसे भी तोड़ दिया। ये भी किसी काम की नहीं, मन कर रहा है इसकी जान ले लूँ पर नहीं ले सकता, अभी के लिए मेरे पास कोई दूसरी साइकाइट्रिस्ट नहीं। आहान अपने कमरे से बाहर निकाला और दूसरे कमरे में जाकर म्यूज़िक सुनने लगा। वो काफ़ी देर तक म्यूज़िक सुनता रहा मगर उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बेड पर गुस्से के मारे वो चादर को नोच रहा था और नोचते हुए उसने चद्दर को फाड़ भी दिया था। वो एकदम से खड़ा हुआ, उसका चेहरा पसीने से भर गया था और उसकी नसें बाहर आने को हो गई थीं। आहान ने ड्रॉर से नींद वाली दवाई निकाली और एक के बाद एक 4-5 गोलियाँ खा ली। फिर वो सीधे बाहर निकला। उसके विला में उसकी शानदार स्विमिंग पूल बना हुआ था। उसने अपने कपड़े उतारे और उल्टा होते हुए स्विमिंग पूल में गिर गया। थोड़ी देर बाद वो स्विमिंग पूल में ऐसे तैर रहा था जैसे मानो मर गया हो। इसकी कुछ देर बाद वो उठा और गहरी गहरी सांस लेने लगा। मुझे सच में अपने गुस्से का कुछ करना होगा, वरना कोई भरोसा नहीं मैं कब इस दुनिया से निकल जाऊं। उसने दोबारा पानी में डुबकी लगाई और तब तक नहाता रहा जब तक उसे नींद नहीं आने लगी। जब उसे नींद आने लगी तब वो खड़ा हुआ और बेडरूम में जाकर सो गया। मुंबई के ही एक रेस्टोरां में एक 50 साल का आदमी एक लड़की को डांट रहा था। वो उस रेस्टोरां का ओनर था और लड़की वहां काम करने वाली वेट्रेस। रेस्टोरां ओनर जोर से चिल्लाकर बोला, अभी तुम्हें यहाँ काम करते हुए 7 दिन भी नहीं हुए और तुमने इन 7 दिनों में 2 बार हमारे रेगुलर कस्टमर के साथ बदतमीजी की है। 5 क्रॉकरी सेट तोड़ दिए और 4 कस्टमर के खाने में पानी और मिर्ची डाल दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रखने वाला। मुझे अपने लिए किसी और को देखना होगा। तुम दिखने में खूबसूरत हो इसलिए मैंने तुम्हें काम पर रखा, लेकिन तुम तो मेरा नुकसान करवा रही हो। उसके सामने एक लगभग 21 साल की लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें नम थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन सर, उसने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की थी। क्रॉकरी सेट काफी पुराने हो चुके थे, आज नहीं तो कल टूट ही जाते। उसने सिर झुका रखा था। एक तो गलती करती हो, ऊपर से माफी मांगने के बजाय खुद को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो। ये आज आखिरी गलती थी तुम्हारी। आगे से तुमने किसी कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव किया या कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा चाहत, रेस्टोरेंट ओनर ने कहा। वो चाहत थी, चाहत शर्मा। दिखने में कमाल की खूबसूरत, लगभग 5 फीट 4 इंच हाइट, फेयर ओवल फेस, हल्की ग्रे आईज और कमर के ऊपर तक के गहरे भूरे सीधे बाल। उसने ब्लू शॉर्ट स्कर्ट और व्हाइट शर्ट पहना था जो वहां की वेट्रेस की ड्रेस थी। चाहत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कहिए सर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। चाहत की आंखें बंद थीं और उसने अपनी इन्हीं बंद आंखों में कहा, मैं कितनी मेहनती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। ऊपर से भगवान भी मुझे दिल से काम करते देख खुश होते होंगे। भगवान का पता नहीं, लेकिन इस तरह मेरा नुकसान होता देख मैं जरूर दुखी होता हूँ। अगर तुम्हें नौकरी की इतनी ही जरूरत है तो तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तुम यहाँ दोपहर से लेकर शाम तक काम करती हो मगर इसके बावजूद इतनी गलतियां कर देती हो कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट ओनर ने सख्ती से कहा। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं अब से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, चाहत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। इसके बाद भी तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें सीधे नौकरी से बाहर निकाल दूंगा, उसके बॉस ने कहा।
ठीक है, मुझे मंजूर है, चाहत बोली और फौरन रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगी। मगर जैसे ही वो मुड़ी, उसका हाथ एक ग्लास से टकराया और वो नीचे गिर गया। चाहत ने अपनी आंखें बंद कर ली। ग्लास टूट गया जिसकी वजह से बॉस का पारा और भी हाई हो गया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यू आर फायर्ड। चाहत के पास अब सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा था, वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद चाहत अपनी फ्रेंड के साथ थी और दोनों पार्क में बैठी थी। उसकी फ्रेंड का नाम श्रद्धा था जो कि उसकी उम्र की ही थी और दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। वो दिखने में गेरुए रंग की खूबसूरत लड़की थी। चाहत का उतरा हुआ चेहरा देखकर श्रद्धा सब समझ गई। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब क्या किया तुमने जिसकी वजह से उसने तुम्हें काम से निकाल दिया? बोलते हुए श्रद्धा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अरे यार, मैं क्या करूं, मैं अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी मगर फिर भी पता नहीं कैसे मुझसे गलतियां हो रही थी। जब पता हो आपकी लगी पड़ी है तो आप ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर किस्मत आपके साथ ना हो तो ये अपने आप ही होता रहता है, चाहत ने मासूमियत से कहा। चाहत की बात सुनकर श्रद्धा ने जवाब में कहा, मैं तुम्हें पिछले 2 महीने में 4 बार अलग अलग कामों पर लगा चुकी हूँ मगर तुम हर जगह पर यही गलतियां करती हो। अगर यही रहा तो मैं भी तुम्हारी आगे मदद नहीं कर पाऊंगी। श्रद्धा उसकी एक बहुत फ्रेंड थी जो अपनी तरफ से उसकी हर संभव मदद करती थी। प्लीज यार, ऐसा मत कहो, तुम अच्छे से जानती हो मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। मेरी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई जिससे मैं ढंग की जॉब पकड़ सकूं। बोलते हुए चाहत रोने लगी और उसने श्रद्धा को गले से लगा लिया। चाहत को परेशान देखकर श्रद्धा भी उदास हो गई। उसने उसे सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम कुछ सोच लेंगे, बस भगवान के लिए तुम कोई गड़बड़ मत करना। जब देखो उल्टी सीधी हरकतें करती हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। चाहत श्रद्धा से अलग हुई और बच्चों समूह बनाकर कहा, अब ठीक से बड़े होने का मौका ही कहाँ मिला, थोड़ा बहुत बचपना बचा है जो इन हरकतों में निकल जाता है। तुम इन सब बातों को छोड़ो और बताओ कि मेरे लिए कोई नई जॉब है तुम्हारे पास? हाँ है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सोचने दो, मैं तुम्हें सोचकर बताती हूँ, श्रद्धा ने जवाब दिया। वो अपने दिमाग पर जोर दे रही थी। चाहत ने पलाथी मारी और दोनों हाथों को बगल में दबाते हुए बोली, जो भी सोचना है जल्दी सोचो क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभी 2 घंटे बाद मेरी नेक्स्ट जॉब का टाइम हो जाएगा। काफी सोचने के बाद श्रद्धा बोली, अच्छा, मेरे अंकल हैं जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। थोड़े दिन पहले उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनके लिए शॉपिंग कर सके, अच्छी खासी सैलरी देने के लिए भी तैयार है, और उस जॉब के बाद तुम्हें बाकी सभी पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। बाकी सब तो ठीक है पर भगवान के लिए इस बार कोई गड़बड़ मत करना। तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगी और इस बात की मैं तुम्हें बोलकर गारंटी नहीं बल्कि तुम्हें लिखकर ही गारंटी दूंगी। बोलते हुए चाहत ने अपनी पलकों को झपकाया। श्रद्धा ने एक बार के लिए अपने चेहरे को अजीब सा किया और फिर फोन निकालकर अपने अंकल से बात की। कुछ देर बात करने के बाद उसने खुशी से अपने अंकल को बाय कहा और चाहत को बोली, उन्होंने तुम्हारे काम के लिए हाँ बोल दिया है, श्रद्धा ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा। चाहत उसके गले लग गई। सच में? बताओ मुझे कब से काम पर जाना है? कल शाम को ही, श्रद्धा ने गले लगते हुए ही कहा। कल आहन ओबेरॉय के यहाँ कोई पार्टी है, तुम्हें वहाँ अंकल की हेल्प करनी है। देख, सब कुछ ध्यान से करना क्योंकि आहन ओबेरॉय कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, श्रद्धा बार बार उसे कोई भी गलती न करने के लिए समझा रही थी क्योंकि वो चाहत को अच्छे से जानती थी। चाहत मेहनती जरूरी थी लेकिन न चाहते हुए भी उससे गलतियां हो ही जाती थीं। ठीक है, देखना, जैसे ही मुझे यहाँ से मेरी पहली सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें अपनी तरफ से पार्टी दूंगी, चाहत बोली। चाहत को गुड विशेस देने के बाद श्रद्धा वहां से चली गई। वहीं चाहत भी काफी खुश थी, उसे नई जॉब जो मिल गई थी, और साथ ही उसे जॉब के पहले दिन ही शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के यहाँ जाना था।